तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग श्रीमद् भगवद् गीता के आत्म संयम योग नाम के छठे अध्याय के सैतीसवें श्लोक से लेकर 45 श्लोक पर्यंत अर्जुन ने योग भ्रष्ट की गति विषयक जो प्रश्न किया है उसका विचार कर रहे हैं। तो पहले हम लोग पाठ करेंगे, आप लोग देखिए छठे अध्याय का 37 श्लोक निकालिए। अर्जुन उवाच अयति ही श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम् काम गतिम् कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चित्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिम् तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृताम् लोका नुषित्वा शाश्वतिः समः शुचीनाम् श्रीमताम् गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कूले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदिदृशम् तत्र तम् बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगे संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम् इति ओम। प्रथम तीन श्लोक यानी 37 से लेकर 39 इन तीन श्लोक से अर्जुन ने अपनी शंका पूरी की है। अर्जुन के मन में योग भ्रष्ट की गति के विषय में संदेह हुआ है, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि अर्जुन की दृष्टि में योग भ्रष्ट का क्या स्वरूप है, किस स्थिति को प्राप्त व्यक्ति को अर्जुन ने योग भ्रष्ट से समझा और उनकी गति के विषय में पूछा, तो उसका विचार पहले अवश्य कर्तव्य है। देखिए, वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होना चाहता है तो उनके लिए चित्त शुद्धि के लिए सबसे पहले कर्मानुष्ठान आवश्यक होता है। विविदिशा पर्यंत, चित्त शुद्धि पर्यंत जिसने कर्मानुष्ठान कर लिया है, ध्यान दीजिए, अर्जुन की दृष्टि से योग भ्रष्ट का जो स्वरूप है उस व्यक्ति को खड़ा करते हैं कि जिसने चित्त शुद्धि पर्यंत कर्मानुष्ठान तो कर लिया है, चित्त शुद्धि से विविदिशा उत्पन्न हो गई। विविदिशा पता चला ना, वेदी तुम इच्छा, तत्व को जानने की इच्छा को विविदिशा कहते, यानी कि ब्रह्म सूत्र के अनुसार कहे तो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा वो हो गई। और उसके पश्चात जिन्होंने सर्व कर्म का परित्याग कर दिया है, विविदिशा के पश्चात तो कर्म की कोई भूमिका नहीं रह जाती है, कर्म का त्याग ही होता है। यानी प्राप्त परमहंस परिव्राजक भाव, परमहंस और परिव्राजक भाव को जो प्राप्त हुआ है और परमहंस परिव्राजक भाव यानी कि सन्यास ग्रहण करके गुरु उपसदन, गुरु की शरण को जो प्राप्त है, और गुरु कैसे, वो भी परमहंस परिव्राजक भाव को प्राप्त और आत्म साक्षात्कार से युक्त पर प्रबोधन दक्षम शिष्य के संशयों को छेदन करने में, आत्म तत्व का प्रबोधन करने में जो दक्ष यानी कुशल है, ये गुरु ऐसे चाहिए। उपनिषदों में गुरु का स्वरूप बताया श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तो ऐसे जो जीवन मुक्त है, जो खुद परमंश परिव्राजक भाव को प्राप्त और उसके फलस्वरूप आत्म साक्षात्कार से युक्त और इसीलिए ही जीवन मुक्त, और इतना ही नहीं पर प्रबोधन दक्षम, आगत शिष्यगण और अनुयायी वर्ग को वेदांत का प्रबोध करने में जो दक्ष है, कुशल है, ऐसे गुरु का उपसदन जिसने किया, और ततः यानी उसके बाद गुरु के द्वारा वेदांत महावाक्य का उपदेश जिसने प्राप्त किया और अहम् ब्रह्मास्मि इति आकारक अनुभव नहीं हुआ और इसमें जो कारणभूत बाधाएं हैं, प्रतिबंध है, असंभावना और विपरीत भावना रूप जो प्रबंध है, प्रतिबंध है, उसका निराश करने के लिए जो वेदांत प्रस्थान त्रयी का श्रवण कर रहा है, ब्रह्म सूत्र का जो श्रवण कर रहा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर अनावृत्ति शब्दात ये जो सूत्र पर्यंत जो चतुर्लक्षणी जो मीमांसा है, जिसको शारीरक मीमांसा, ब्रह्म सूत्र वगैरह नाम से कहा जाता है, उसका जिन्होंने गुरु के प्रसाद से करने का आरंभ किया है और श्रद्धान है, श्रद्धा से युक्त है, वेदांत का श्रवण मनन निदिध्यासन कर रहा, श्रद्धा से युक्त है, किंतु आयुष अल्प है। आयुष अल्प होने से ये जो साधन है वो पूरा नहीं हो पाया, यानी श्रवणादि साधन का जो फल तत्व साक्षात्कार है वहां तक वो पहुंच नहीं पाया, ज्ञान का परिपाक नहीं हुआ और श्रवण मनन निदिध्यासन करते हुए बीच में ही जिसका शरीर छूट गया, ऐसा व्यक्ति है यहां पर योग भ्रष्ट के रूप में अर्जुन की दृष्टि से, ये योग भ्रष्ट का स्वरूप आपको बता दिया। योग भ्रष्ट का शब्दार्थ होता है योग से जो गिर गया, साधना जिसकी पूरी नहीं हो पाई, तत्व ज्ञान पर्यंत जो नहीं पहुंच पाया, और यहां पर योग शब्द का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय में, इसको कल आपको इस अध्याय के चार भाग बता करके बताया था, उसमें दूसरा जो भाग है दसवें श्लोक से लेकर बत्तीसवें श्लोक पर्यंत भगवान ने इसी अध्याय में योगानुष्ठान बताया, इसका दूसरा शब्द कहेंगे निदिध्यासन, यानी कुल मिलाकर ये कहेंगे कि श्रवण मनन और निदिध्यासन जो कर रहा और अल्पायु के कारण शरीर छूट गया वो है यहां पर योग भ्रष्ट। ज्ञान का परिपाक नहीं हुआ इसलिए अज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, अज्ञान अभी विद्यमान है और शरीर छूट गया तो वो निर्विशेष मोक्ष तो प्राप्त कर ही नहीं सकता। निर्विशेष मोक्ष कब हो सकता है? ज्ञान के पश्चात ही तो, ज्ञान होने से ही तो। निर्विशेष मोक्ष कब हो सकता है? ज्ञान के फल स्वरूप। अभी इनका ज्ञान हुआ, उससे पहले ही उसका शरीर छूट गया, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, तो निर्विशेष मोक्ष तो ये प्राप्त कर ही नहीं सकता। अर्जुन के मन में ये बैठा हुआ। और दूसरी बात ये है कि उपासना सहित कर्म का जो फल है देवलोक, वो भी वो प्राप्त नहीं कर सकता है। उपासना सहित कर्म का फल जो हमारे यहां बताया, देवलोक बताया है। यदि कोई व्यक्ति उपासना सहित कर्मानुष्ठान करता है तो उसका फल देवलोक बताया, क्रम मुक्ति। अर्जुन के मन में ये बैठा है कि ये जो योग भ्रष्ट है, जिसका स्वरूप आपके सामने रखा, उन्होंने कर्म का तो परित्याग कर दिया है, कर्मानुष्ठान तो उन्होंने चित्त शुद्धि के लिए ही किया है, चित्त शुद्धि हो गई, कर्मानुष्ठान उन्होंने त्याग दिया, संन्यास ले लिया, और उपासना भी उन्होंने की है, तो वो भी देवलोक की प्राप्ति की इच्छा से तो उद्देश्य से तो की नहीं है, कर्मानुष्ठान किया है तो चित्त शुद्धि के लिए, उपासना की है तो चित्त की स्थिरता के लिए की है, देवलोक की दृष्टि से तो उन्होंने कर्म भी नहीं किया है और उपासना भी नहीं की है, इसलिए देवलोक का अनुभव भी यह नहीं कर सकता, ये योग भ्रष्ट व्यक्ति, यानी देवलोक को भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि देवलोक की प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म और कर्म सहित उपासना सहित कर्मानुष्ठान करे, तो शास्त्र में उसका फल बताया देवलोक की प्राप्ति, यदि उद्देश्य करेंगे तो, नहीं तो नहीं। हाँ, तो उनके मन में यह है कि मेरे को देवलोक की प्राप्ति करनी है तो उपासना सहित कर्म अनुष्ठान करे, अहंग्रहादि उपासना सहित कर्म का फल है देवलोक की प्राप्ति, जिसके लिए अर्ची मार्ग बताया है, अर्ची मार्ग से जाता है। अर्ची मार्ग आप जानते हैं, देवयान मार्ग जिसको कहते हैं, देवयान मार्ग, उसकी गति का क्रम हमारे शास्त्रों में बताया कि जैसे ही उपासना सहित कर्मानुष्ठान करने वाला जो साधक है, उसका शरीर छूटता है, जब जो फल के उद्देश्य कर रहा है उसकी बात है, जिन्होंने देवलोक के प्राप्ति की इच्छा से उपासना सहित कर्मानुष्ठान किया है, योग भ्रष्ट तो ये प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु जो प्राप्त करता है, किस क्रम से प्राप्त करता है, प्रसंग से वो मैं बता रहा हूं आपको, कि वो शरीर छूटते ही उनके शरीर का अग्नि संस्कार किया जाता है ज्ञाति बंधुओं के द्वारा। ये तो हमारी वैदिक परंपरा है कि शरीर छूटने के बाद आप ये न समझे कि शरीर एक वेस्ट पदार्थ हो गया इसलिए उसको जलाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये अंत्येष्टि संस्कार है, क्या है? अंत्येष्टि संस्कार। आप लोग जानते हैं कि गर्भाधान से लेकर निषेक पर्यंत षोडश संस्कार किए जाते हैं, 16 संस्कार, और इन संस्कारों से मनुष्य का जीवन बड़ा ही संस्कृत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वो परलोक फल के योग्य हो जाता है। इसलिए गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि, अंत्य यानी अंतिम, इष्टि यानी याग, कि जिसका अंत्य यानी अंतिम यज्ञ हो गया, और अंतिम यज्ञ जो है स्वयं के द्वारा नहीं होता है, पुत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा होता है। इसलिए आप लोगों को पता है कि जब पिता का शरीर छूट जाता है तो उसको निश्चित की गई जगह पर ले जाया जाता है, जिसको श्मशान बोलते हैं। तो शव यात्रा जब जा रही है तो उसका जो पुत्र है वो अग्नि को साथ में लेकर के आगे चलता है। वो अग्नि घर से ले जाई जाती है, घर में वो अग्नि अग्निहोत्र याग की हुआ करती है, कि जो मृतात्मा ने जीवन पर्यंत अग्निहोत्र याग किया है, सुबह शाम आहुति दी है, और वो अग्निहोत्र की अग्नि पीढ़ी दर पीढ़ी से वो चली आती है। उसी अग्नि से श्मशान में शव को ले जाकर के उसी अग्नि से मुखाग्नि के द्वारा शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद ही उसको फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। और इस शरीर में से एक बाल भी उखाड़े बिना, ध्यान दीजिए, हमारी शास्त्रीय परंपरा यह है कि शरीर में से एक बाल भी उखाड़े बिना पुत्र का अधिकार नहीं है कि इसका बाल भी खींचे और उस रूप में अग्नि संस्कार किया जाए। और अग्नि संस्कार लकड़ी में जब होता है तो उससे अर्ची और धूम दो की उत्पत्ति होती है। अर्ची कहते हैं जो अग्नि की ज्वाला। तो सबसे पहले ये जो यजमान है वो अर्ची अभिमानी हो जाता है, अर्ची अभिमानी देव से वो युक्त हो जाता है। पहला ही उसका स्टेशन है अर्ची, इसलिए उसको अर्ची मार्ग बोलते हैं। अर्ची को प्राप्त होता है वो जीवात्मा है, वो अर्ची से अर्ची अभिमानी देव लेना। अर्ची अभिमानी देव क्या करता है? वो जो है उसको अहर अभिमानी देव को प्राप्त कराते हैं। अहर यानी दिन, दिवस, दिवस के अभिमानी देवता को। दिवस के अभिमानी जो देवता है वो जो है उससे आगे शुक्ल पक्ष अभिमानी जो देवता है, शुक्ल पक्ष को वो प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता से वो आगे षडमास उत्तरायण अभिमानी जो देव है उसको प्राप्त होता है, यानी षडमास को प्राप्त होता है। संवत्सर के दो हिस्से हैं ना, उत्तरायण और दक्षिणायण। उत्तरायण के बाद वो संवत्सर को प्राप्त होता है, वो यानी संवत्सर अभिमानी देवता को प्राप्त होता है। ये क्रम है। संवत्सर के बाद वो देवलोक, जो मुख्य देवलोक नहीं, उसके बाद वो वायु को प्राप्त होता है। वायु से आदित्य, आदित्य के बाद चंद्रमस, चंद्रमस के बाद वो विद्युत को प्राप्त होता है। विद्युत के बाद वरुण, वरुण के बाद इंद्र, और उसके बाद उपासना सहित कर्म का फल है प्रजापति भाव की प्राप्ति उपनिषदों के अनुसार। तब जाकर के वो प्रजापति भाव यानी ब्रह्मलोक को ये प्राप्त करता है। ये जो है क्रम है, उपासना सहित कर्म यदि कोई लोक प्राप्ति की इच्छा से करता है तो इसी क्रम में मृत्यु के पश्चात वो जो उपासना सहित कर्मानुष्ठाता वो देवलोक ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ये बात अर्जुन ने सुन रखी है और भगवान आगे सुनाएंगे उसको। अर्जुन किस बात का पता, इसलिए अर्जुन को मन में यह कि ये जो योग भ्रष्ट है वो इसी क्रम से देवलोक को भी प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने देवलोक की प्राप्ति से उपासना सहित कर्मानुष्ठान नहीं किया है। उन्होंने तो कर्मानुष्ठान केवल चित्त शुद्धि के लिए किया, चित्त शुद्धि हो गई, विविदिशा उत्पन्न होगी, कर्म का त्याग कर दिया और उपासना भी की है तो वो चित्त की स्थिरता के लिए की है, देवलोक की प्राप्ति की इच्छा से की नहीं। इसलिए जिस उद्देश्य से कर्मानुष्ठान या उपासना की ही नहीं है तो वो फल मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए इधर अज्ञान नष्ट नहीं होने के कारण वो निर्विशेष मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा, इधर उपासना सहित कर्म का फल देवलोक का भी वो अनुभव नहीं करेगा। ठीक है, केवल कर्म का फल जो पितृलोक है उसका तो अनुभव कर सकता है, केवल कर्म का फल भी है पितृलोक। जो कोई व्यक्ति केवल कर्म करता है, केवल वैदिक कर्म करता है सकाम भाव से, तो उसका फल शास्त्र में बताया पितृलोक की प्राप्ति। पितृलोक का दूसरा शब्द प्रयोग है स्वर्गलोक, जिसको स्वर्गलोक कहते हैं, जो बड़ा ही प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं स्वर्गलोक। वो कर्म केवल कर्म का फल है, उपासना सहित कर्म का फल बता दिया देवलोक, अब ये पितृलोक केवल कर्म का फल। कर्म से अभिप्राय है वैदिक कर्म, यज्ञ वगैरह, यज्ञ दान वगैरह जो भी सत्कर्म हमारे यहां गृहस्थाश्रम में किया जाता है, जिसका अनुष्ठान करने के लिए गृहस्थाश्रम है, इसलिए गृहस्थाश्रमी व्यक्ति का शरीर छूटता है तो उसके अनंतर उसके ज्ञाति बंधु उसको ये बोलते हैं कि ये स्वर्गस्थ हो गए। और कोई सन्यासी का शरीर छूट जाता है तो क्या बोलते हैं, ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। और गृहस्थी का शरीर छूटता है तो उसके बाद उसकी फोटो लगाई जाती है तो उसके नाम के पूर्व स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो गृहस्थाश्रम अवस्था में कर्मानुष्ठान, उन्होंने गृहस्थाश्रम धर्म का पालन किया है तो उसका फल है स्वर्गलोक की प्राप्ति। स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए भी वो भी शरीर छूटने के पश्चात ही होती है, इसलिए इसका भी मार्ग वो उसके समान ही है। जब ये शरीर वर्तमान शरीर छूट जाएगा तो उसके जो ज्ञाति बंधु है, उसके पुत्र वगैरह, उसको शव्य संस्कार करने के लिए श्मशान की ओर ले चलेंगे, उसी क्रम से ही अग्नि घर से ले जाई जाएगी, अग्नि संस्कार काष्ठ में अग्नि संस्कार किया जाएगा, शरीर को अविक्षिप्त किए बिना अक्षत रखे हुए, बिल्कुल क्षत किए बिना जब उसका अग्नि संस्कार होगा तब जो है वो उससे निकलने वाली जो धूम है, वो धूम से स्थूल धूम नहीं लेना है, धूम अभिमानी देव लेना, उसको वो प्राप्त होगा। कर्मफल का मार्ग है, धूम अभिमानी देव से वो रात्रि रात्रि अभिमानी देव को प्राप्त होगा। रात्रि से वो कृष्ण पक्ष जो है, एक महीने के दो हिस्से है कि नहीं, उसमें एक पक्ष है कृष्ण पक्ष, वो कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता को प्राप्त होगा। उसके बाद वो दक्षिणायन को प्राप्त होगा, दक्षिणायन अभिमानी देव को। उसके बाद वो पितृलोक को प्राप्त होगा, और आकाश, और आकाश से चंद्रमस ईश सोमो राजा भवती, वो स्वर्ग में जाकर के वो सोम राजा का वो रूप धारण करता है। तम देवा भक्षयंती, ऐसा उपनिषदों में लिखा, देवता के साथ उसका वास होता, उसको सामिप्य मुक्ति कर्म का फल के रूप में कह सकते हैं। देवता के साथ वो वास करेगा, और वो देव वो ये पितृलोक में वो गया है कर्म के फल स्वरूप ही गया है। तो जैसे अभी भगवान ने इसी गीता में कहा है कि तीर्थं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, वहां स्वर्गलोक में वो कर्म के फल जो है उसको भोग करके वो भोग से समाप्त हो जाते हैं। वो फल जैसे गुड़ की डली है, उसको आप खाते चले जाएंगे तो गुड़ की डली जैसे एक समय आएगा कि वो खत्म हो जाती है, वैसे ही स्वर्गीय फल है वो भोग से क्षीण हो जाता है। उसके बाद वहां शरीर अग्नि संस्कार के लिए बचता नहीं है, क्षीण हो जाता है। और क्षीण पुण्य फिर वो जो है मर्त्यलोकम विशन्ति, मर्त्यलोक को फिर वापस आता है। मर्त्य से अभिप्राय फिर वो मनुष्य ही बने, या ऐसा कह नहीं सकते, कीट पतंग आदि का भी शरीर धारण कर सकते। तो ये जो पितृलोक है वो सत्कर्म का फल बताया, और वो सत्कर्म का फल जो पितृलोक है वो उसको वो प्राप्त कर सकता है जिसने पितृलोक प्राप्ति की भावना से आकांक्षा से कर्म किए हैं। अब ये जो योग भ्रष्ट जिसकी विषय में अर्जुन पूछ रहे, उन्होंने तो कर्मानुष्ठान किया है, वो तो चित्त शुद्धि के लिए किया था, उसके बाद उसका त्याग कर दिया। पितृलोक की प्राप्ति से उन्होंने कर्मानुष्ठान तो किया नहीं, इसलिए वो पितृलोक रूप फल को भी प्राप्त नहीं होगा। देखिए चार गति होती है मनुष्य की, चार गति, या ये कहो कि चार प्रकार के मनुष्य होते हैं, ज्ञानी, कर्मी, उपासक और स्वाभाविक कर्म करने वाला, स्वाभाविक जीवन जीने वाला। तो जो ज्ञानी होगा वो तो मुक्त होगा, और अभी उपासक जो उपासना सहित कर्म कर रहा है वो देवलोक को प्राप्त होगा, केवल कर्म कर रहा है वो स्वर्ग को, और जिन्होंने वैदिक कर्म या उपासना कुछ भी नहीं किया है तो उसके लिए उपनिषदों में कहा कि वो जायस्व मृयस्व इति एतत् तृतीयम स्थानम्, वो तो बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होगा। यानी जो अज्ञानी है, स्वाभाविक जीवन जीने वाला है, उसका तो मृत्यु के बाद जो है पुनः तुरंत जन्म होगा, कीटादि रूप में उसका तुरंत जन्म होगा, तृण जलुका के समान। और उसके लिए कहा कि वो बार बार जन्मेगा और बार बार मरेगा। तो चार गति जो हुआ करती है उसमें ये जो योग भ्रष्ट है उसका अज्ञान अभी नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो निर्विशेष मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा, ज्ञानी की गति को प्राप्त नहीं करेगा। उपासना सहित कर्म का फल है ब्रह्मलोक को भी वो प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने इस दृष्टि से कर्म किए नहीं। मात्र कर्म का फल है पितृलोक, उनकी दृष्टि से उन्होंने कर्म किए नहीं है, इसलिए वो पितृलोक को भी प्राप्त नहीं करेगा। अब एक गति बाकी रहेगी कीटादि भाव की, अब अर्जुन के मन में ये रहा कि ये चतुर्थ गति है जो अधोगति जिसको कहते हैं। अर्जुन के मन में संशय ही इसलिए हुआ कि इसकी अधोगति तो हो नहीं सकती है, दुर्गति तो हो नहीं सकती है, और सदगति की जहां तक बात है उसके तीन विकल्प है, तीनों विकल्प को उन्होंने देख लिया, तीनों विकल्प के कारण इसके पास नहीं है, इसलिए तीनों में से एक भी गति नहीं होगी और दुर्गति संभव नहीं है। इसलिए अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि भगवान ये जो योग भ्रष्ट है उसकी अब सुगति होगी या दुर्गति होगी, भगवान इसका आप जवाब दीजिए। यानी उसका जो है कीटादि भाव रूप धारण करके वो अज्ञ होने से कष्टमय जो दुर्गति है वो जो है दुर्गति को प्राप्त करेगा या सुगति को प्राप्त करेगा। अर्जुन ने ये दोनों विकल्प इसलिए रखे कि अर्जुन की दृष्टि से ये दोनों कारण इसमें विद्यमान है, इसलिए यद्यपि ये योग भ्रष्ट में नहीं है किंतु विकल्प उसके सामने ये है कि देवयान और पितृयान मार्ग संबंधी कर्म और उपासना तो है नहीं, और वर्णाश्रम जो कर्म है उनका तो उन्होंने त्याग कर दिया है, वर्ण गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया, वानप्रस्थ का त्याग कर दिया, संन्यास आश्रम का अनुष्ठान कर रहा है, वर्ण धर्म का त्याग कर दिया। तो वर्णाश्रम से जो भ्रष्ट होता है उसकी अधोगति हमारे यहां बताई गई है, सामान्य जो वर्ण और आश्रम से जो रहित है उसकी अधोगति बताई। तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि इन्होंने वर्ण धर्म का त्याग कर दिया है इसलिए अधोगति हो सकती है, इसलिए एक विकल्प अर्जुन के सामने यह अधोगति का इसलिए आया, दूसरा विकल्प सुगति का अर्जुन के सामने इसलिए है कि वो कष्टमय जो है दुर्गति को प्राप्त इसलिए नहीं कर सकता है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुर्गति का जो कारण शास्त्र निषिद्ध कर्म वो तो इन्होंने किए नहीं है। दुर्गति का कारण क्या है? शास्त्र निषिद्ध कर्म, शास्त्र निंदित। तो ये जो योग भ्रष्ट है वो शास्त्र निंदित कर्म से रहित है, इसलिए जैसे वामदेव जी हमारे यहां उपनिषदों में वामदेव जी की कहानी आती है, वामदेव जी को भी ज्ञान होने में कुछ बाकी रह गया था और शरीर छूट गया, उन्होंने फिर मनुष्य शरीर धारण किया और गर्भ में ही उनको ज्ञान हो गया, बस उतना ही शेष बाकी था, प्रतिबंध था, तो गर्भावस्था में ही फिर उनको ज्ञान हो गया, वामदेव प्रतिपेदे अहम मनु अहम अभवश्च इत्यादि अनुभव हुआ उसको। तो पूर्व में उनका शरीर जो है छोटा था, तत्वज्ञान नहीं हुआ था, तो तत्वज्ञान नहीं हुआ था तो उनको दूसरा शरीर धारण करना पड़ा और गर्भ में उसको गर्भ में प्रतिपेद है उसको ज्ञान हुआ। इसलिए अर्जुन के सामने ये दृष्टांत है कि जैसे वामदेव जी शास्त्र निंदित कर्म से शून्य थे और उनके ये जो विकल्प प्राप्त न होकर के पुनः मनुष्य शरीर उन्होंने धारण किया और फिर उनको गर्भ में ही तत्वज्ञान हुआ, तो ये सद्गति का भी कारण है विद्यमान। इसलिए अर्जुन ने ये जो है पर्याकुलित मन से भगवान श्री कृष्ण को कहा कि देखो अब श्लोक में ये तो जो है अर्जुन के मन में जो था वो उसको आपको बता दिया, अब श्लोक में जो शब्द है उस शब्द का अर्थ कर दे। देखो अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन वाच अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। ये अर्जुन ने जो है भगवान को पूछ लिया। देखो अर्जुन ने श्लोक के पूर्वार्ध में योग भ्रष्ट के लिए तीन विशेषणों का प्रयोग किया, अयति ही, श्रद्धयोपेत और योगाचलित मानस। योग भ्रष्ट के लिए तीन विशेषणों का प्रयोग। देखो सबसे पहले अयति शब्द का प्रयोग किया है, योग भ्रष्ट के लिए कहा अयति ही। देखो क्या होता है अर्थ अयति का, अयति से उसमें से अकार निकाल दो तो क्या रहेगा, यति। यति शब्द का सीधा सा अर्थ होता है यत्नशील, यत्न परायण व्यक्ति को यति बोलते हैं। जो जिसका भी प्रयास, यत्न, प्रयत्न आगे प्र उपसर्ग लगा दोगे तो प्रयत्न बन जाएगा। प्रकृष्ट रूप से जो यत्न कर रहा है, जिसका प्रयत्न चालू है उसको कहेंगे यति। अर्जुन ने आगे अकार लगाया है अयति। अ है वो नय है, नय। तो नय का जो नय शब्द का प्रयोग जो बिल्कुल प्रयत्न रहित है उसके लिए भी कर सकते हैं। अयति यानी बिल्कुल जो प्रयत्न नहीं कर रहा है उसके लिए भी नए शब्द का प्रयोग करेंगे तो अयति शब्द का वाच्य वो भी बन जाएगा जो बिल्कुल नठल्ला बैठा हुआ है उसके लिए भी अयति यानी प्रयत्न रहित। अयति का अर्थ हो गया प्रयत्न रहित बिल्कुल। किंतु हमारे भाष्यकारों ने कहा कि यहां जो है अयति शब्द में अर्जुन ने जो अशब्द का यानी नए शब्द का जो प्रयोग किया है वो अल्प प्रयत्न के लिए किया है। नई का अर्थ है अल्प, अल्पार्थ के लिए यहां नए शब्द का प्रयोग है। तो अयति का अर्थ हो गया अल्प प्रयत्न, जिन्होंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। तत्वज्ञान पर्यंत जो प्रयत्न नहीं कर पाया, श्रवणादि साधन करते करते ही जिसका शरीर छूट गया तो उसको अल्प प्रयत्न बोलेगे कि नहीं, पूर्ण प्रयत्न नहीं हो पाया। जैसे समझ आप भोजन करने बैठे, रोज पांच रोटी खाते तो अभी पत्नी ने चार ही रोटी दी है, एक रोटी का भोजन बाकी है तो उसको यही कहेंगे कि अभी भोजन अल्प हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ। फिर भी कहेंगे कि नहीं भोजन अभी अल्प है। ठीक इसी प्रकार से जो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील है, जो अभी श्रवणादि अंतरंग साधन कर रहा है और बीच में शरीर छूट गया तो उसको कहेंगे अल्प प्रयत्न अयति। ये अयति शब्द के प्रयोग के पीछे अर्जुन का अभिप्राय है। अब अर्जुन कहते हैं कि अयति ही और श्रद्धयोपेत, जो श्रद्धा से युक्त है। उपेत का अर्थ होता है युक्त, श्रद्धा से युक्त है। श्रद्धयोपेत, श्रद्धया उपेत, श्रद्धा से जो युक्त है यानी श्रद्धा वाला है। श्रद्धा शब्द हम लोगों ने बहुत ही सुना है। श्रद्धा का अर्थ होता है, श्रद्धा शब्द का सीधा सीधा जो है अर्थ होता है आस्तिक बुद्धि। आचार्यों ने श्रद्धा शब्द का अर्थ किया है आस्तिक बुद्धि। आस्तिक बुद्धि यानी आस्तिक भाव, यानी वेद में जो कहा है वो बिल्कुल यथार्थ है, इस प्रकार इस बात को स्वीकार करने का नाम है आस्तिक बुद्धि। या भगवान भाष्यकार ने श्रद्धा शब्द का एक और अर्थ किया है, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु और वेदांत वाक्य में विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। गुरु के वचन में विश्वास, गुरु के शास्त्रीय वचन में विश्वास को श्रद्धा बोलते हैं। और ये श्रद्धा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि फल अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है। फल मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है, किंतु मिलेगा। इस प्रकार की जो दृढ़ भावना, उसको कहते हैं श्रद्धा। जैसे हम कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे, दान कर रहे, व्रत कर रहे, जप कर रहे, तप करते हैं, तीर्थवास वगैरह जो भी अपने सनातन धर्म में ये सब साधन बताए गए, वो सब हम कर रहे हैं। तो जैसे भोजन करते ही तुरंत क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है, क्या इस प्रकार ये जो वैदिक यज्ञ दान व्रत जप करने के तुरंत फल की प्राप्ति होती है? नहीं होती है ना। यज्ञ करते ही फल की प्राप्ति होती नहीं तो कोई यज्ञ ही नहीं करता। यज्ञ समाप्त होते ही कहा जाए कि तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, करोगे? तो कहेंगे नहीं 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 करना, मेरे को तुरंत मरना नहीं है। तो वही वैदिक कर्म का जो फल है वो तो कालांतर में मिलता है। कुछ ऐसे भी कर्म है कि मिलता है, किंतु परलोक की प्राप्ति तो कालांतर में होती है। और दूसरी बात, वो दिखता नहीं है, इसलिए उसमें वेट करना पड़ता है। किंतु वेद, वेद प्रतिभू है। प्रतिभू समझ में, प्रतिभू शब्द लोक में जो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बोले अंग्रेजी में। जैसे समझ लो कि आपके पास 500 रुपए की नोट है, उसके ऊपर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, प्रॉमिस किया हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ आता है कि ये जो 500 रुपये है उसमें मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप भारतवर्ष में कहीं भी जाकर के इससे 500 रुपये की कोई भी जो चीज है वो आप खरीद सकते हैं। सारे भारतवर्ष में कहीं भी जाकर के इसको दो तो वो जो है दुकानदार है उसके अवैज में 500 रुपये का पदार्थ वो देगा ही, मैं ये दस्तखत कर देता हूं। आप कहीं भी चले जाएंगे तो उन्होंने सिक्योरिटी प्रतिभू है, वो गवर्नर प्रतिभू है, इसलिए आपको वो मिल जाता है। किंतु डुप्लीकेट जो 500 की नोट है वो बिल्कुल ऐसे ही रहती है, कहीं चल भी जाए लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलने की, किसी को पता चल गया तो वो जेल की हवा खानी पड़ेगी। ठीक ऐसे ही वेद जो है वो कर्म के फल के प्रति प्रतिभू है, सिक्योरिटी है। वो कहता है कि तुम यदि यागादि कर्म करोगे तो उसके फल स्वरूप तुमको तत्त्व कर्म के अनुसार तत्त्व फल की प्राप्ति होगी। तो वो वेद के ऊपर विश्वास करके, जैसे हम गवर्नर के ऊपर विश्वास करके 500 के नोट का आदान प्रदान करते हैं, वैसे ही वेदोक्त होने से हम कर्मानुष्ठान करते हैं और ये फल जरूर मिलेगा। ये जो दृढ़ भावना है उसका नाम है श्रद्धा। तो अर्जुन कहते हैं कि श्रद्धा से उपेत है, और योगाचलित मानस से उसका भी विचार हम लोग फिर कल करेंगे। ओम।